हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अर्णव की निगाहें धृति के चेहरे पर टिकी रहीं। दोनों की निगाहें एक क्षण टकराईं। उन घबराई निगाहों में कुछ सवाल झलक रहे थे, पर वो खामोश रहीं और अगले ही पल अपनी निगाहें झुका लीं। पर अर्णव की नज़रों से उन आंखों में झलकता सवाल नहीं छुप सका और न ही अर्णव को देखते हुए उसकी आंखों में आई नमी। अर्णव के चेहरे पर गंभीर भाव मौजूद थे। अर्णव के कदम सीधे कमरे में जाकर रुके। उसने धृति को कमरे में आने के बाद नीचे खड़ा किया। धृति उसके सामने सर झुकाए खड़ी थी। धृति, मेरे तरफ देखो, अर्णव की आवाज में कोमलता झलक रही थी। धृति ने हौले से पलके उठाकर उसे देखा। उसकी बड़ी बड़ी कत्थई आंखें आंसुओं से लबालब भरी हुई थीं। उन आंसुओं में घुली थी उसकी बेबसी और चेहरे पर असहजता के भाव गहरी उदासी समेटे बिखरे हुए थे। धृति, तुम इन कपड़ों में अनकंफर्टेबल हो? अर्णव ने गहरी निगाहों से उसे देखते हुए सवाल किया। उसके सवाल करते ही धृति, जो पहले से भरी पड़ी थी, खींचते हुए बोली, इन्हें कपड़े कहते हैं? पूरा बदन दिख रहा है मेरा। मैं ऐसे कपड़े खुद के सामने भी नहीं आती। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, खुद को देखने में शर्म आ रही है। आप क्यों जबरदस्ती मुझे ऐसे कटे फटे कपड़े पहनाना चाहते हैं? मुझे नहीं पहनने ऐसे कपड़े जिससे मेरे बदन को ढकने की जगह उसकी नुमाइश हो। पर आप कुछ समझते ही नहीं हैं। आपको बस आपका गुस्सा, आपकी नफरत और आपका बदला दिखता है। मैं और मेरी तकलीफ तो कभी नजर ही नहीं आती। धृति की आवाज भारी हो चली थी, गला रुल गया था। जाने क्यों, अर्णव के इतने दर्द और जिल्लत देने के बाद भी धृति को उससे एक उम्मीद थी जो हर बार टूटती थी, और उसके साथ ही कतरा भर टूटती थी धृति। फिर भी हर बार उससे उम्मीद बांध लेती, शायद इसलिए क्योंकि वो उसका पति था, या शायद इसलिए क्योंकि अर्णव ही कभी कभी अपने कोमल व्यवहार से उसे ऐसी उम्मीद दे लेता था, पर फिर खुद ही उस उम्मीद को तोड़ता भी था। धृति अब भी अपनी बाहों को अपने सीने पर लपेटे खड़ी थी और आंसुओं से भरी आंखों से नाराजगी से अर्णव को देख रही थी। गहरी उदासी में लिपटी उसकी नाराजगी अर्णव समझ रहा था। उसने एक बार फिर गंभीरता से सवाल किया, तो तुमने ऐसे कपड़े पहले कभी नहीं पहने? कभी भी नहीं। मुझे ऐसे बदन दिखाने वाले कपड़े जरा भी पसंद नहीं हैं। मैं ऐसे कपड़ों में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहती। मैंने हमेशा से उसी तरह के सिंपल और बदन ढकने वाले कपड़े पहने हैं जो अभी पहनती हूँ। धृति ने बिना सकुचाए सहजता से जवाब दिया, जिसे सुनकर अर्णव के चेहरे के भाव कुछ बदल गए। उसने अब धृति के बालों पर नजरें टिकाते हुए अगला सवाल किया, और तुम्हारे बाल हाल फिलहाल में बढ़ाए हैं या हमेशा से इतने ही लंबे थे? अर्णव का सवाल सुनकर धृति चौंक गई और हैरानी से आंखें बरी बरी किए उलझन भरी निगाहों से उसको देखने लगी। पर अर्णव के चेहरे पर अब भी गंभीर भाव मौजूद थे और वो जवाब के इंतजार में धृति को ही देख रहा था। ये देखकर धृति ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, बचपन में तो छोटे ही रहे होंगे, पर जब से मुझे याद है मैंने लंबे बाल ही रखे हैं, क्योंकि मेरे पापा को मेरे लंबे बाल बहुत पसंद थे। जब मैं छोटी ही थी, मुझे तब की बात याद है, पापा बहुत शौक से मेरे बालों की चोटी बनाते हुए कहते थे कि धृति बेटा, अपने बाल लंबे रखना, आपके पापा को आपके लंबे बाल बहुत पसंद हैं। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, या ये कहिए कि मुझे जितना भी प्यार मिला उन्हीं से मिला, और उनके लिए ही मैंने लंबे बाल रखे हैं। धृति बचपन की उन मधुर यादों में खोई हुई थी। वो बीते हसीन पलों का झोंका उसे खुद में समेट ले गया था। इस वक्त वो उस वक्त में जा चुकी थी जब उसके पापा उसके साथ हुआ करते थे, और धृति के लबों पर सौम्य सी मुस्कान अपना अधिकार जमा चुकी थी। एक तरफ धृति हर बात और आज की वास्तविकता से बेखबर उन लम्हों को एक बार फिर जीने लगी थी, खुश थी। वहीं उसकी बातें सुनने के बाद अर्णव के मन में तूफान सा उठ रहा था। धृति को देखते हुए अर्णव की आंखों के सामने एक तस्वीर उभरी, जिसमें शक्ल तो यही थी, पर धृति ने घुटनों से काफी ऊपर तक का वन पीस ड्रेस पहना हुआ था। शायद किसी फंक्शन की फोटो थी, इसलिए धृति मेकअप करके अच्छे से तैयार हो रखी थी। खुले बाल कंधे से हल्के नीचे तक आ रहे थे और पैरों में पेंसिल हील्स थीं। बिल्कुल कंफर्टेबल लग रही थी वो, और चेहरे पर कॉन्फिडेंस के साथ रौब भी झलक रहा था। शायद रूप का गर्व था जो उसके चेहरे पर बिखरा हुआ था। उस धृति को अर्णव ने इस धृति से कंपेयर किया तो दोनों में जमीन और आसमान का अंतर पाया। एक बार फिर अर्णव सोचने पर मजबूर हो गया कि एक शख्स के दो इतने अलग रूप कैसे हो सकते हैं, और आखिर धृति का कौन सा रूप सच्चा है। उसके सोच पर विराम तब लगा जब उसके कानों में धृति की धीमी सी भारी आवाज पड़ी। मैं ऐसे कपड़े पहनकर आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे इनमें जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। अर्णव अपनी सोच से बाहर आया और निगाहें धृति की ओर घुमाई तो वो सर झुकाए किसी मुजरिम जैसे खड़ी थी और अपनी हथेली से अपने सीने के उभरते हिस्से को ढकने की कोशिश कर रही थी। अर्णव ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसने अपनी निगाहें फेर ली और चेंजिंग रूम की ओर कदम बढ़ा दिए। कुछ ही मिनट बाद वो हाथ में एक हैंगर लेकर बाहर आया और धृति की हथेली थामकर उस पर हैंगर रखते हुए बोला, जाओ जाके चेंज करो और जरा जल्दी करना, पार्टी के लिए देर हो रही है। धृति के कानों में अर्णव के कोमल शब्द पढ़े तो उसने निगाहें उठाकर उसे देखा। अर्णव ने आंखों से ही उसे जाने का इशारा किया तो अब धृति ने पलकें झुकाकर अपने हाथ में मौजूद हैंगर को देखा और अगले ही पल आश्चर्य से आंखों की पुतलियां फैलाए अचंभित सी अर्णव को देखने लगी। धृति को यूं खुद को ताकते देखकर अर्णव ने अब जरा सख्ती दिखाई और उसे घूरते हुए बोला, जाकर कपड़े बदलती हो या ऐसे ही उठाकर ले चलो पार्टी में। ये सुनते ही धृति ने हड़बड़ी में उस पर से नजरें हटाई और चेंजिंग रूम की ओर दौड़ते हुए बोली, मैं अभी चेंज करके आई। धृति बिना एक पल रुके लड़खड़ाते कदमों से दौड़ते हुई सीधे चेंजिंग रूम में जा घुसी। उसकी हड़बड़ी देखकर अर्णव हौले से हंसा और अगले ही पल खुद को आश्चर्य से देखने लगा। उसने अपने माथे पर दो उंगलियों को रगड़ते हुए मन ही मन खुद बुदबुदाया, फिर काउच पर आकर बैठ गया। घड़ी की सुई तेजी से आगे बढ़ने लगी। अर्णव को धृति का इंतजार करते हुए 15 मिनट से ऊपर हो गया, पर धृति की कोई खबर नहीं थी। अर्णव खुद को शांत किए उसका इंतजार कर रहा था, पर हर बीतते पल के साथ उसका पारा हाई होता जा रहा था। जब उससे और इंतजार नहीं हुआ तो उठकर लंबे लंबे डग भरते हुए चेंजिंग रूम के पास चला आया और गेट नॉक करते हुए बोला, धृति और कितना वक्त लगेगा तुम्हें, हमें देर हो रही है। अगर तुम इसी तरह एक साड़ी पहनने में इतना वक्त लेती रहीं तो पहुंच गए हम पार्टी में। तुम जानती हो वादा करके मुकरना, धोखेबाजी करना और लेट जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए जल्दी बाहर आओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा और फिर तुम जिस हालत में होगी उसी में उठाकर ले जाऊंगा तुम्हें। धृति की आवाज़ भारी हो चली थी, गला रुंध गया था। जाने क्यों अर्णव के इतने दर्द और जिल्लत देने के बाद भी धृति को उससे एक उम्मीद थी जो हर बार टूटती थी और उसके साथ ही कतरा भर टूटती थी। धृति फिर भी हर बार उससे उम्मीद बांध लेती, शायद इसलिए क्योंकि वो उसका पति था या शायद इसलिए क्योंकि अर्णव ही कभी कभी अपने कोमल व्यवहार से उसे ऐसी उम्मीद दे देता था पर फिर खुद ही उस उम्मीद को तोड़ता भी था। धृति अब भी अपनी बाहों को अपने सीने पर लपेटे खड़ी थी और आंसुओं से भरी आंखों से नाराजगी से अर्णव को देख रही थी। गहरी उदासी में लिपटी उसकी नाराजगी अर्णव समझ रहा था। उसने एक बार फिर गंभीरता से सवाल किया, तो तुमने ऐसे कपड़े पहले कभी नहीं पहने? कभी भी नहीं, मुझे ऐसे बदन दिखाने वाले कपड़े जरा भी पसंद नहीं हैं। मैं ऐसे कपड़ों में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहती। मैंने हमेशा से उसी तरह के सिंपल और बदन ढकने वाले कपड़े पहने हैं जो अभी पहनती हूँ। धृति ने बिना सकुचाए सहजता से जवाब दिया, जिसे सुनकर अर्णव के चेहरे के भाव कुछ बदल गए। उसने अब धृति के बालों पर नजरें टिकाते हुए अगला सवाल किया, और तुम्हारे बाल हाल फिलहाल में बढ़ाए हैं या हमेशा से इतने ही लंबे थे? अर्णव का सवाल सुनकर धृति चौंक गई और हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी किए उलझन भरी निगाहों से उसको देखने लगी। पर अर्णव के चेहरे पर अब भी गंभीर भाव मौजूद थे और वो जवाब के इंतजार में धृति को ही देख रहा था। ये देखकर धृति ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, बचपन में तो छोटे ही रहे होंगे, पर जब से मुझे याद है मैंने लंबे बाल ही रखे हैं, क्योंकि मेरे पापा को मेरे लंबे बाल बहुत पसंद थे। जब मैं छोटी ही थी मुझे तब की बात याद है, पापा बहुत शौक से मेरे बालों की चोटी बनाते हुए कहते थे कि धृति बेटा अपने बाल लंबे रखना, आपके पापा को आपके लंबे बाल बहुत पसंद है। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, या ये कहिए कि मुझे जितना भी प्यार मिला उन्हीं से मिला और उनके लिए ही मैंने लंबे बाल रखे हैं। धृति बचपन की उन मधुर यादों में खोई हुई थी, वो बीते हसीन पलों का झोंका उसे खुद में समेट ले गया था। इस वक्त वो उस वक्त में जा चुकी थी जब उसके पापा उसके साथ हुआ करते थे और धृति के लबों पर सौम्य सी मुस्कान अपना अधिकार जमा चुकी थी। एक तरफ धृति हर बात और आज की वास्तविकता से बेखबर उन लम्हों को एक बार फिर जीने लगी थी, खुश थी। वहीं उसकी बातें सुनने के बाद अर्णव के मन में तूफान सा उठ रहा था। धृति को देखते हुए अर्णव की आंखों के सामने एक तस्वीर उभरी जिसमें शक्ल तो यही थी पर धृति ने घुटनों से काफी ऊपर तक का वन पीस ड्रेस पहना हुआ था। शायद किसी फंक्शन की फोटो थी इसलिए धृति मेकअप करके अच्छे से तैयार हो रखी थी। खुले बाल कंधे से हल्के नीचे तक आ रहे थे और पैरों में पेंसिल हील्स थीं। बिल्कुल कम्फर्टेबल लग रही थी वो और चेहरे पर कॉन्फिडेंस के साथ रौब भी झलक रहा था। शायद रूप का गर्व था जो उसके चेहरे पर बिखरा हुआ था। उसकी सोच पर विराम तब लगा जब उसके कानों में धृति की धीमी सी भारी आवाज पड़ी। मैं ऐसे कपड़े पहनकर आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे इनमें जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। अर्णव अपनी सोच से बाहर आया और निगाहें धृति की ओर घुमाई तो वो सर झुकाए किसी मुजरिम जैसे खड़ी थी और अपनी हथेली से अपने सीने के उभरते हिस्से को ढकने की कोशिश कर रही थी। अर्णव ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसने अपनी निगाहें फेर ली और चेंजिंग रूम की ओर कदम बढ़ा दिए। कुछ ही मिनट बाद वो हाथ में एक हैंगर लेकर बाहर आया और धृति की हथेली थामकर उस पर हैंगर रखते हुए बोला, जाओ जाकर चेंज करो और जरा जल्दी करना, पार्टी के लिए देर हो रही है। धृति के कानों में अर्णव के कोमल शब्द पढ़े तो उसने निगाहें उठाकर उसे देखा। अर्णव ने आंखों से ही उसे जाने का इशारा किया तो अब धृति ने पलके झुकाकर अपने हाथ में मौजूद हैंगर को देखा और अगले ही पल आश्चर्य से आंखों की पुतलियां फैलाए अचंभित से अर्णव को देखने लगी। धृति को यूं
अंदर से धृति का कोई जवाब तो नहीं आया, पर कुछ मिनट बाद ही दरवाजा खुल गया। सामने ही धृति खड़ी थी, सर झुकाए, उदास और मायूस सी। शायद डर था कि अर्णव अब फिर उस पर नाराज होगा, गुस्सा करेगा, पर अर्णव का गुस्सा तो उसका मासूमियत भरा मुरझाया चेहरा देखकर ही शांत हो गया था। उसकी हथेली थामकर अर्णव अंदर आया। धृति ने न तो नजरें उठाकर उसे देखा और न ही उसके लबों से एक शब्द ही निकला। अर्णव ने अंदर आकर उसके कंधों को थामते हुए उसे दूसरी तरफ घुमा दिया और उसकी ड्रेस की चेन खोलते हुए बोला, चेन नहीं खुल रही थी तो मुझे बता नहीं सकती थी, इतना वक्त बर्बाद कर दिया और परेशान हुई सो अलग। धृति अब भी खामोशी रही, जाने क्यों, पर उसकी ये खामोशी अर्णव को खल गई। उसने गहरी सांस छोड़ी, फिर चेन खोलकर पीछे हटते हुए बोला, मैं बाहर से दरवाज़ा लगा रहा हूँ, जल्दी से चेंज करके बाहर आना। इतना कहकर वो जैसे ही जाने को पलटा, उसकी नज़र गेट के दोनों ओर पड़े हील्स पर पड़ी, जिन्हें धृति ने यूं ही उतारकर फेंक दिया था। अर्णव ने अफसोस से सर हिलाया और बाहर चला गया। कुछ देर बाद धृति किसी नाजुक खूबसूरती सी गुड़िया जैसे अर्णव के सामने खड़ी थी। फॉरेस्ट ग्रीन शिमरी सीक्वेंस वर्क साड़ी में लिपटी, बैकलेस हल्टर नेक ब्लाउज पहने धृति की इंडियन ब्यूटी उभर कर सामने आ रही थी। बाकी सब अब भी पहले जैसा ही था, बस अब गले में उस नेकलेस की जगह मंगल सूत्र था और पैरों में स्लिम हील्स, जिसमें अब भी वो कम्फर्टेबल नहीं थी, पर पार्टी के हिसाब से उसे इतनी मुसीबत उठानी ही थी। खैर, धृति इस रूप में पहले से भी ज्यादा स्टनिंग और गॉर्जस लग रही थी। अब उसके चांद से चेहरे पर से असहजता के बादल छंट चुके थे, हालांकि नर्वस अब भी थी। अर्णव ने नज़र भर उसके रूप को निहारा, उसके दिल से आवाज़ आई कि यकीनन धृति इंडियन लुक में ज्यादा हसीन लगती है। फिर उसने धृति का हाथ थामा और निकल गए दोनों पार्टी के लिए। दोनों वेन्यू पर पहुंचे तो अर्णव ने गाड़ी रोकी, बाहर ही मीडिया ने उसकी गाड़ी को घेर लिया, पर गार्ड्स ने आकर रास्ता बनाया और गाड़ी उस शानदार विला में दाखिल हुई जहां पहले से गाड़ियों की भीड़ लगी थी। कुछ मीडियाकर्मी वहां भी मौजूद थे। अब इतनी बड़ी पार्टी थी, इतने बड़े बड़े नामी लोग यहां आने वाले थे, तो मीडिया का आना तो लाजमी ही था। धृति, जिसने ये सब बस टीवी में देखा था, आज पहली बार सब हकीकत में अपने सामने देखते हुए बुरी तरह से घबरा रही थी। जाने क्यों, पर अजीब सा डर मन पर छाया हुआ था, जैसे कुछ गलत होने वाला है। उस बड़े से गेट के बाहर गाड़ी खड़ी करने के बाद एक तरफ से अर्णव बाहर निकला और घूमकर धृति की तरफ आ गया। उसने दरवाज़ा खोला और हल्का सा झुकते हुए अपनी हथेली बड़ी ही अदब से धृति की तरफ बढ़ा दी। कम आउट, अर्णव ने आंखों से धृति को हथेली थामने का इशारा किया तो धृति ने थोड़ा हिचकिचाते हुए उसकी हथेली पर अपनी हथेली रख दी। अर्णव ने पीछे से बुक निकाला और गाड़ी की चाबी गार्ड को देने के बाद धृति की हथेली को थामे अंदर की ओर बढ़ गया। धृति की नर्वसनेस और घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसने अर्णव की हथेली को कस के थामा हुआ था, शायद गिरने का डर उसके मन पर हावी था। अर्णव बड़ी सहजता से उसकी हथेली को थामे आगे बढ़ रहा था जब धृति हील्स में लड़खड़ाते कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी और सबकी निगाहें उन पर टिकी थीं, क्योंकि इन सब के बावजूद धृति बेहद हसीन लग रही थी और अर्णव और वो जैसे एक दूसरे को पूरा करते हुए नजर आ रहे थे। पार्टी के होस्ट मिस्टर बंसल की नज़र जब अर्णव पर पड़ी तो वो उसके पास चले आए। हाय अर्णव, बहुत देर लगा दी आने में, हम कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मिस्टर बंसल ने अर्णव की तरफ हाथ बढ़ाते हुए फ्रैंकली उससे देर आने की शिकायत की, जिसे सुनकर अर्णव ने उनके आगे बढ़े हाथ को थामते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, हाय मिस्टर बंसल, देरी के लिए माफ़ी चाहूँगा, पर बस रास्ते में ट्रैफिक मिल गया और आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, तुम आए इतना भी कम नहीं। अर्णव उनकी बात सुनकर बस मुस्कुरा कर रह गया। मिस्टर बंसल ने अब अर्णव के बगल में खड़ी धृति पर एक भरपूर नज़र डाली, जो इस वक्त पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी। फिर अर्णव की ओर नज़रें घुमाते हुए सवाल किया, अर्णव, ये नायाब हीरा कहाँ से ढूंढ लाए तुम? इसे पहले कभी तुम्हारे साथ नहीं देखा। नायाब हीरा नहीं, खूबसूरत कोमल कली कहिए बंसल साहब, जो कुछ वक्त पहले ही मेरी ज़िंदगी के गुलशन में खिली है। अर्णव ने भी उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया, जिसे सुनकर मिस्टर बंसल हंस पड़े। तुम्हारा अंदाज भी कमाल है, वैसे हमें इस हसीना से नहीं मिलवाओगे? लीजिए, अभी मिलवा देते हैं, ये है मिसेस धृति। इसके बाद उसने एक पल ठहरने के बाद आगे कहा, मेरी पीए। धृति, जो तब से खामोश खड़ी उनकी बातें सुन रही थी, अर्णव का जवाब सुनकर उसकी निगाहें एक पल को उसकी तरफ उठीं। मन में एक झटका सा लगा, सीने में चुभन का एहसास हुआ और चेहरे पर अजीब सी उदासी छा गई। शायद अर्णव का उसे अपनी वाइफ के जगह पीए कहकर इंट्रोड्यूस करवाना उसे खल गया था, पर उसने जल्दी ही खुद को संभालते हुए अपना सामना इस हकीकत से करवाया कि यहाँ वो उसकी पीए की हैसियत से ही आई है। धृति अब अपनी भावनाओं में उलझी हुई थी जब मिस्टर बंसल के शब्द उसके कानों में पड़े। इतनी दिलकश पीए कहाँ से ढूंढ लाए जनाब? खूब मन लगता होगा अब तो तुम्हारा काम में, साथ काम करने वाली इतनी खूबसूरत हसीना जो है। उनकी बात सुनकर धृति की निगाहें एक बार फिर अर्णव की ओर घूम गईं। शायद वो मिस्टर बंसल की बातों के पीछे छिपे अर्थ को समझ रही थी और अर्णव का जवाब सुनने के लिए बेकरार थी। अर्णव ने उनकी बात पर सहमति जाहिर करते हुए मुस्कुराकर कहा, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, काफ़ी टैलेंटेड पीए मिली है मुझे, मेरा आधा काम कम हो जाता है और साथ में मन भी बहल जाता होगा। अब काम के साथ ऐसी हसीना का दीदार हो जाए तो सारी थकान ही मिट जाती है। मिस्टर बंसल ने अर्णव की बात का रुख बदला और अर्णव कुछ पल चुप रह गया। इतना नादान नहीं था वो कि उनकी बातों के अर्थ को ना समझ सके। कुछ पल बाद उसने गंभीरता से जवाब दिया, आप तो जानते ही हैं, हसीनाओं से दिल बहलाने का मुझे कुछ खास शौक नहीं, मुझे काम करने वाली की नहीं उसके काम की खूबसूरती में दिलचस्पी है। अर्णव के इस जवाब से जहां धृति के चेहरे पर राहत के भाव उभरे, वहीं मिस्टर बंसल भी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुरा उठे। पार्टी में बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे और अर्णव के साथ धृति भी सबसे मिल रही थी। धीरे धीरे वो सहज हो रही थी, पर गाहे बगाहे कोई ना कोई आकर कोई ऐसी बात कर जाता जिससे धृति अपने और अर्णव के रिश्ते पर शर्मसार हो जाती। मन ही मन सोच बैठती कि क्या बिगड़ जाता अर्णव का अगर उसे पीए की जगह पत्नी कह देता। कम से कम तब लोगों को उनके रिश्ते और उसके चरित्र पर सवाल उठाने का मौका तो नहीं मिलता। पार्टी में कईयों की निगाहें धृति के हसीन चेहरे, खूबसूरती से तराशे गए बदन पर फिसल रही थीं, जिसे महसूस करते हुए वो असहज हो उठती। कभी साड़ी के पल्लू से अपनी पीठ को कवर करने की कोशिश करती, जो उस बैकलेस ब्लाउज में पूरी दिख रही थी, तो कभी आंचल के नीचे से झांकती अपनी गोरी पतली कमर को ढकती, जहां कईयों की लालसा भरी निगाहें टिकी थीं। कई बड़े बड़े घरों से आई लड़कियां अर्णव के साथ धृति को देखकर मन ही मन उससे कुड़ रही थीं, पर मजाल हो अर्णव के रहते कोई धृति के आसपास भी भटक सके। अर्णव इन सब से पूरी तरह से अनजान तो नहीं था, उसकी पैनी निगाहें पल पल धृति के चेहरे के बदलते भावों पर ठहरी हुई थीं, पर वो अनजान बना रहा। पार्टी अपने चरम पर थी, शराब और शबाब सबका आनंद लिया जा रहा था। लाइट म्यूजिक पर डांसर्स के साथ बाकी लोग भी थिरक रहे थे। अर्णव ने धृति से भी पूछा, पर उसने इनकार कर दिया। खाना पीना भी शुरू हुआ, पर धृति इतनी असहज थी कि उससे ठीक से खाया भी नहीं गया। वो बस यहाँ से जल्दी वापस जाना चाहती थी। पार्टी अब अपने अंतिम चरण पर पहुँच गई थी। अर्णव सारा वक्त धृति के साथ था, उसने एक सेकेंड के लिए भी उसको अकेला नहीं छोड़ा। हम घर वापस कब जाएंगे?
धृति का सवाल सुनकर अर्णव, जो किसी से बात कर रहा था, उसने पलटकर उसे देखा। धृति याचना करते हुए उसे तक रही थी। बस चल रहे हैं, मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ, तुम यहीं रहना, आने के बाद घर चलेंगे। अर्णव की आवाज़ में सॉफ्टनेस झलक रही थी, शायद वो भी धृति की स्थिति समझ रहा था। अर्णव की बात सुनकर जहां धृति को कुछ सुकून मिला, वहीं जैसे ही अर्णव ने उसकी हथेली को छोड़ा, धृति का मन व्याकुल हो उठा। अर्णव ने अभी एक कदम ही बढ़ाया था कि धृति ने हड़बड़ी में उसकी बांह पर से उसके ब्लेजर को पकड़ लिया। अर्णव ने चौंकते हुए पलट कर देखा।
मुझे अकेले छोड़कर मत जाइए, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। धृति ने एक बार फिर याचना की। उसकी आंखों में घबराहट और डर जैसे कई भाव झलक रहे थे। अर्णव ने उसके चेहरे पर पसरी व्याकुलता, घबराहट भरे भाव देखे तो वापस उसके पास आया और प्यार से उसके गाल को छूकर बोला, बस 5 मिनट में वापस आ रहा हूँ, तब तक यहीं रहना। धृति अब कुछ कह न सकी। अर्णव ने अपनी बांह पर से धृति के हाथ को हटाया और वापस पलटकर वॉशरूम की तरफ चला गया। धृति टकटकी लगाए उसे खुद से दूर जाते देखती रही। जैसे जैसे आज अर्णव उससे दूर जा रहा था, वैसे वैसे धृति की घबराहट और बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते अर्णव धृति की आंखों से ओझल हो गया, पर धृति अब भी टकटकी बांधे उसी दिशा में देखे जा रही थी। मिसेस धृति,